ये वाणी परम पूज्य बाबूजी महाराज की सनातन वाणी है। ये उनके उन प्रेमियों के लिए जिन्होंने उनकी सोहबत उठाई, जिनके रोम रोम में वे बसे हैं, उनके लिए अमृत दान है। और वो प्रेमी जिनको उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ पर जो उनके पावन नाम से जुड़े हैं, उनके लिए ये उनकी पवित्र सनातन वाणी वरदान है, जिसे बार बार सुनिए तब उसका रस मिलता है। राम कथा जे सुनहि अघाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि।
रास्ता है परमार्थ से चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे है जहाँ जड़ और चेतन दोनों है। और इसीलिए जो आखिरी चार मकान थे अलग आदम और अखा, तीन चार मकान उन्होंने इसको किसी को जाहिर नहीं किया, खास खास आदमियों को और उनको खासतौर से पीछे से काम लेना, उनको ये चीजें जाहिर करी बाकी छुपा दी। और दो मुकाम तो बहुत ही छुपा गए, यानी जो अच्छे अच्छे बुजुर्गों ने भी इजाजतें दी हैं तो वो दूसरों के सुपुर्दी कर गए कि इनके दो मुकाम तीन मुकाम बात करते करते हमने एक ही मुकाम कर दिया। और पुरुषार्थ उनके जिम्मे तालीम भी कर दी, क्योंकि तालीम में एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है बाद वक्त अधिकारी अच्छा आ जाता है तो प्रभु की दया हो जाता है। देखो एक तो गुरु कृपा होती है और एक गुरु कृपा के साथ साथ किसी वक्त में ईश्वर कृपा, तो जिस वक्त गुरु कृपा होती है तो वो भी थोड़े एक हद के अंदर, लेकिन जिस वक्त ईश्वर कृपा होती है तो अथाह और ऐसी अथाह होती है कि उसमें गैर अधिकारी भी अधिकारी बन जाता है। उस वक्त जिस वक्त गैर अधिकारी आ जाए तो हालत खत्म है और जहां वो उठ के गया फिर वही हालत हो जाए। तो इसलिए देखो ये भी पहचान है कि जिस वक्त अधिकारी आएगा बिल्कुल उसका हल्का होगा, जैसे जुड़ेगा इसकी तरकीब। और जब अधिकारी आएगा तो बड़ा फुलका सा होगा, हो जाएगा कभी तवज्जो बल्कि उसको बातों में लगा और ऐसी बात बताओ कि जिससे खुशी वक्त में उसकी अटेंशन इस तरफ हो जाए, जहाँ अटेंशन इधर को हो उस वक्त इससे पहले नहीं। अपना वक्त खराब करोगे बहुत मुमकिन है मुनकर भी हो जाए, वो तुम्हारी बात को माने ही नहीं बल्कि और मजाक उड़ाए, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं होगा। उसको तो दुनिया लेके आया, तो दुनिया की बातें करते रहो 10 मिनट 5 मिनट, जब देखो कि इसका जरा छुपाव है और अंदर से उसके हृदय में ठेस करते रहो प्रेम। बहुत मुमकिन है उस वक्त प्रेम की ठेस से वो कुछ खुल जाए, और बिल्कुल ही कठिन है भरा हुआ है बुरी तरह से तो डांट दे, और उसको फिर मुमकिन है कि एक दो दिन लगे। इसलिए भी जब भी आए इसका एक तरह खुद जज कर ले, और ये देखो का अधिकारी बन भी सकता है या अधिकारी है, और इसकी पहचान बड़ी मुमकिन है। दूसरी पहचान और जैसे ही वो गुजरेगा तो प्रभु विद्या शुरू हो जाएगा, और जब तक वैसे गुजरेगा तो चुप हो जाओ और खामोशी से बैठ जाओ कि किसी सूरत से वो उसका एटमॉस्फेयर बदल जाए। और जिस वक्त उसका एटमॉस्फेयर बदलेगा तो बहुत मुमकिन है कि उस परमात्मा की तरफ से जुड़े, बिल्कुल ही तमाशाई आप कुछ आजमाने के लिए भी आप तो उस हालत में सिवा इसके तुम अपने खामोशी अख्तियार करो, कुछ बार पर अख्तियार चाहना। लेकिन आया है तो दुआ दो कि प्रभु भला करे और अपनी खुश और तुम्हारे अंदर से ये कोशिश हो, क्योंकि तुम्हारे आने का भी उसे कुछ फल मिलना चाहिए और वो यही है कि दुआ करो और साथ ही जितना कोशिश कर सकते हो उसके हृदय में प्रेम करते रहो। बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम जो आए तो प्रेम को लिए हुए आए, बस जहाँ तीन चार दफे आया अब प्रेम नहीं, पहले प्रेम नहीं होता, पहले अटैचमेंट होता है ना, उसके बाद फिर रिगार्ड होता और उसके बाद थर्ड टाइम जाके प्रेम। तो शुरू में वो चिपक जाता है, कहता है अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको रिगार्ड आता और इसके बाद फिर प्रेम करता। जिस वक्त प्रेम उत्पन्न हो गया फिर समझिए कि काम करता और जहाँ काम बना फिर गुरु भी लीट जाता है, प्रभु भी लीट जाता है, फिर वहां पे थोड़ी बहुत कुछ कमी भी रह जाती है तो गुरु जिम्मेवारी लेते और कहता है कि इसका भला हो जाए। बाबू जी इसीलिए लोगों ने गुरु को विष्णु ब्रह्मा महेश मैं कहता जो मान लीजिए गुरु राम मेरा और फिर कबीर साहब ने यहीं पे कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लालों को बलियारी उन गुरु की जिन गोविंद लगा है। और सहज भाई ने तो इतना विश्वास कहा कि काम क्रोध लोभ मोह देके प्रभु तुमने हमें बेसहाय दुनिया में भेज दिया। ये गुरु ही थे कि जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह सबसे बचा के फिर आपके सामने खड़ा कर दिया, तो हम उन्हें तो नहीं भूलते किसी सूरत से। हालांकि गुरु जिस वक्त प्रभु के सामने खड़ा कर देता है तो खुद पीछे बढ़ जाता है, वो बीच में रोड़ा नहीं डालना, जीव के और प्रभु के बीच में जाति नहीं बनना चाहता, वो दोनों मिल गए। गुरु क्या करता है उसे थपकी देता रहता, किसी लड़के ने पूछा था कुमार, हाँ आपकी लड़की दीजा कुमार, तो देखो ऊपर से वो हाथ रखे रहता है अंदर से थप्पी देता है, तो ऐसे गुरु अंदर से थप्पी देता रहता है और बाहर से हाथ रखे रहता है। ये सिर्फ संतों की इतिहास और प्रभु जहां भी लोग हों संत खूब सुखी रहते हम और आपको वो ऐसा रास्ता बता गए कि जो तपस्वियों के पास जाने में हजारों वर्ष लगे, वो तो तपस्या ही सिखाते उसमें बड़ी तक। इतने आदमी ऐसे हैं जो बीसों वर्ष ब्रह्मचर्य को साधन कर सकते हैं इस कल युग में, कितने आदमी ऐसे हैं कि जो घंटों बैठ सकते हैं। अब हमारे आपके जिसम में इतनी कहाँ, हम तो आप सिर्फ हाथ जोड़ के प्रभु से कह सकते हैं प्रभु हम पर दया करिए, हम तो किसी काबिल है न जिसम से ही काबिल है न अपनी मेहनत से ही काबिल है, हम तो सिर्फ भिखारी हैं आपकी दया है ना। जिस वक्त हम भिखारी बन गए तभी कुछ बहुत मुमकिन है, किसी वक्त जो उनकी दया आगे भिखारी को आप लौट रहो किसी वक्त मालिक लौटा भी देता है कि भाई जाओ आगे चलो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कोई ऐसा ही भिखारी आ गया कि आपको दया आ गई तो आपने उसको इतना सा अनाज दे दिया है दो पैसे दे दिए, ऐसे ही प्रभु को भी जब कभी दया आ गई भिखारी देख के। लेकिन अगर भिखारी दरअसल सच्चा है और गरज उस पर जरूरत है तो प्रभु की मदद बिना हुए नहीं है। और वो सच्चा क्या है कि एक तो गिड़गिड़ाना है और एक प्रेम के साथ गिड़गिड़ाना है कि खूब प्रेम के साथ गिड़गिड़ाओ प्रभु तुम्हारी दया के हम भिखारी हैं, कर दोगे तो बताओ नहीं करोगे सीधा। और देखिए प्रीतम हमेशा प्रेमी जो है हमेशा प्रीतम का सुख देता है, अपना दुख भी उसे कुछ नहीं करता है। वो कहता है आप सुखी रहे, हमें तकलीफ और कोई अड़ नहीं, तो देखिए और उसमें कोई उम्र भी नहीं होती। आप यहाँ ऐसा शख्स आ गया जिससे आप प्रीत करते हैं, आप उठ भी नहीं सकते, तो आप तुझे उसको पानी भी दे रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं, क्यों प्रीत? तो और वो कहता है भाई ये प्रीतम जो है मेरा किसी सूरत से तकलीफ है। तो ये प्रेम ही है जो कि आदमी को हील्ड करा दे। आप तपस्या करेंगे ठीक है, मेहनत कर ली, शाम को मजदूरी ले जाए, इसके आगे कुछ है। लेकिन जिस वक्त आप मजदूरी भी देंगे करेंगे वो तपस्या भी कराएंगे और साथ ही गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु की दृष्टया बेटा हुए नहीं रहे, क्योंकि वो बड़ी दयालु, जहाँ मुंशे बन वहाँ दयालु। तो और जिस वक्त जीव को दुखी देखते हैं तो तड़प, आप अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देते, उसको जब तकलीफ होती है तो आपका हृदय अपनी तकलीफ भूल जाता है। तो ऐसे प्रभु सब नियम नियम सब भूल जाते हैं, जैसे अगर किसी को दुखी दे आप उसी के अंश, और यही रियलाइज करना कि हम उसी के अंश हैं और हमें उसी तक पहुंचना है, और पहुंचना ही नहीं है बल्कि स्थिति करना, वही परमानेंसी करना, ये कि जो परमानेंट स्थिति आपकी ऐसी हो जाए कि जो प्रभु के सन्मुख रहे प्रभु आपके सन्मुख, और वो ही परमानेंसी ऐसी हो जाए कि भूल है नहीं आप ऑल दी 24 आवर्स। देखिए अभ्यास आधा घंटा पौन घंटा ये तो एक वो है, संत मत में बेहद भी कही है कि 24 घंटे में एक सेकंड भी प्रभु की याद से मिला चला जाए वो बेहद भी, फिर भी जो नहीं हो जाए ना सही 24 घंटे में, एक ही एक एक ही मिनट सही, 2 मिनट सही, 10 मिनट सही, जितना आपसे हो सकता है। और फिर जब आप परमार्थी अपने को कहते हैं और दूसरे दुनिया वालों से जरा बचना चाहते हैं, देयर शुड बी सम डिस्टिंक्शन बिटवीन यू एंड दैट वन, है ना? जब तक आप में डिस्टिंक्शन नहीं पैदा करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं परमार्थी? और वो डिस्टिंक्शन क्या है? नेक आचरण और ऐसी और अतिनिर्भरता। जब तक वो डिस्टिंक्शन आप में नहीं आएगी तब तक कोई मुमकिन है कि आपको कहे कि परमार्थी, इसलिए हम कहेंगे परमार्थी भी हैं तो देव बदे खिलाफ है खुश खिलाफ उन्हें मेरे, और फिर उसमें बड़ी तनात होना चाहिए फकीर में से पाका खाद से तनात, और ये क्या ही तो देखिए ये सब चीजें क्या है, ये सब किसी ने झूठ के ही तो लिखा, तो फिर तुम फकीर कैसे कहते हो जब तक तुमने ये चीजें नहीं कह सकते? तो दुनिया जो है आपको बड़ा जज करेगी तब आपकी तरफ मुझे गई। और देखिए एक स्टूडेंट है उसने एमए कर दिया लेकिन उसने किसी से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे तो है डिग्री तो है इसमें लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं हुआ। एक वो शख्स है कि जिसने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया और 50 आदमियों को उसने भटा कर दिया तो उसकी ज्यादा कदर और पब्लिक उसको ज्यादा माने बनस्पत उस शख्स के जिससे कोई किसी को फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही देखो एक चीज जिस वक्त तुम किसी को सिखाने बैठते हो तो गुरु का पहले याद कर लेते, अब गुरु कृपा के साथ अगर कहीं ईश्वर की भी कृपा हो गई तो किस पे हुई? तुम पर, न किसी जो तुम्हारे पास आया तो तुम्हें उसका एहसान ये मानना चाहिए कि तुम्हारे पास आया था इसलिए प्रभु की हम पे कृपा हो गई। तुम्हारा क्या एहसान हुआ भाई जब तुम किस चीज पे अपना शान जमा के, ये तो उसका एहसान आया उसकी बदौलत फिर उन्होंने तुम्हारे ऊपर दिया कर, और उसमें ज्यादा हिस्सा तुमने रख लिया जरा तो एहसान प्रभु का जो हुई और दिया वो तो तुम्हारे ऊपर हुई, उसकी बदौलत ही आने वाले। तो जो तालीम करता है उस पर प्रभु की बड़ी दया होती है। किसकी बदौलत? जिनको तालीम करता है, एहसान जो आते हैं उनका है ना कि आपका। और बहुत मुमकिन है कि किसी वक्त में गुरु की दया तुम पे नहीं हुई तो तुम भी खो रहे, वो भी खो रहे। अगर ऐसा शख्स आ गया कि प्रभु की दया तुम पे हो गई, ये फैज होता है और ये ही अधिकारी है। जिस वक्त अधिकारी आ जाता है तो तुम पे कोई स्टैंड नहीं पड़ता, ना कोई मेहनत पड़ती। जिस वक्त ऐसा शख्स आ जाता है कि जिसको बड़ा रगड़ा देना तो मेहनत भी पड़ती है, और बाल वक्त ऐसा भी होती है प्रभु की दया भी नहीं, तो तुम खामोश हो जाते हैं। फिर पढ़ते हैं उसके खड़े 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 और उनको दौड़ना पड़ेगा। और ये सब जितने एक्सपीरियंसेस हैं सब तारीफ करने वाले होते हैं, तो वो ही अगर उनको लिख दिया ठीक ठीक और समझा दिया किसी वक्त में तो दोनों दूसरे लोगों को सब अच्छा साढ़े आठ बजे
नवंबर था मई सब रात
हनुमान दिया ऐसे ही जहाँ भगवंत का चर्चा होता है वहाँ उसके भक्त आ गए। जहाँ भक्त है वही भगवान, और देखो ये जो आंतरिक सत्संग है इनमें जो सबसे बड़ा फायदा हो जाता, नहीं आवाज नहीं इन्होंने सबसे बड़ा जो फायदा होता है उसका कारण ये है कि भगवंत का जिक्र होता तो उसके जितने भी भक्त वहां पहुंचने की कोशिश करते, और उसमें जो खास संत होते हैं वो तो जरूरी है, तो अपना आशीर्वाद देते हैं। तो जितनी आपकी मेहनत नहीं है उतना उससे उनके आशीर्वाद से फायदा हो जाता है। और यही वजह है जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको महसूस कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कि अभी उस स्टेज पे नहीं आए या उनको इतना पूरा विश्वास नहीं है इस चीज पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है। बाकी संत अपना आशीर्वाद जरूर देगा। सवेरे से आज पाँच साढ़े पाँच बजे से ये हालत थी, मान होता है सब घूम रहे हैं और ये जरूर, लेकिन इस आशीर्वाद के लेने के लिए भी बड़े नेक बन, और इतने नेक बन कि जिससे वो आशीर्वाद होगा। जो चीज सबने बुरी कही है उसको कभी उसको ग्रहण करने की कोशिश करो, बल्कि अपना आचरण इतना ऊंचा बना लो तो जिससे अत पवित्र हो जाओ, ताकि उनका जो आशीर्वाद है वो अच्छी तरह से मिल सके। इसे काम नहीं दिया इसे के नाम का जिक्र, और उसके बाद अपना सब
दुनिया भर के कृष्णों से निपट निपटा के थोड़ी सी जगह एकांत रखो और ऐसी रखो जहाँ के सहूलियत से रोज बैठ सको। तो एक वक्त आएगा कि वो जमीन आपका असर पकड़ेगी और ऐसा असर पकड़ेगी कि जब उस जमीन की तरफ को जाओगे तो उसके याद दिला देगी कि ये भूजा की जगह। तो अब उस कमरे में और इसमें जरा फर्क एक रोज लग गया था आज फिर वो यहाँ लग तो जमीन जो है अपना असर पूर्ण कर ले। इसलिए जहाँ बैठो अपनी जमीन अलग रखो इतनी सी हो कोई हर्ज नहीं। और फिर कपड़े भी अपने ऐसे रखो कि हर शख्स उसको इस्तेमाल ना करे और ऐसा भी है इंतजाम में सामान तो सबसे अच्छा ये है कि अपने कपड़े पूजा के रखा मोटे हम कोई हर्ज नहीं लेकिन धोने जहाँ जिसम की पवित्रता जरूरी है वैसे मेडिकली भी है कि जब नहा धो लेते हैं तो शरीर रिफ्रेश हो जाए और इतनी रिफ्रेश होती है। और देखो शादी ब्याह में जाते हो वही जगह जाते हो तभी तो साफ साफ पहन के जाते हैं क्यों जाते हैं तो लोग यही कहेंगे सब बड़े साफ कपड़े पहने। तो ऐसे ही जब परमात्मा के दरबार में जाते हो तो वहां गंदे कपड़ों को क्या लगा है क्या पवित्र ये कोई जरूरी नहीं है कि कीमती हो बल्कि पवित्र पवित्र से मतलब ये ऐसी गंदी 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 ऐसी जमीन अपनी ठीक कर लो। एक और चीज है जिसमें बड़ी तरक्की कर सकती है और वो है खाना। जिस वक्त जब खाना खाओ कोशिश तो यही हो बड़ी नेक कमाई करना और जरा भी शुभ हो जाए कि नेक कमाई का खाना नहीं है तो सिर्फ जिसम की रक्षा के लिए एक आज रोटी खा दो छोड़ दो और फिर देखो फिर भी गुजर नहीं है तो सब ईश्वर से अर्पण कर दो तो प्रभु हमें मजबूरन खाना पड़ रहा आपका इसमें आशीर्वाद शामिल है और विश्वास लगाओ कि इसमें प्रभु का प्रकाश के सिवा कोई चीज नहीं। और जिस वक्त ये देखो और यही देखो ऐसे करते हैं हाथ जोड़ते हैं प्रभु तो क्या करते हैं अर्पण करते हैं प्रभु ये तुम्हारा दिया हुआ उसमें अपनी विल और लगा दो और ये समझो कि इसमें शिवाय प्रभु के प्रकाश की कोई चीज नहीं और फिर खाओ। तीन महीने के बाद आने तक देना आदमी गाय के लिए खाता है जुबान की गाय के लिए परमार्थी को जुबान की गाय की जरूरत नहीं शरीर की रक्षा की जरूरत है। प्रभु इस शरीर को तब तक ठीक रखे जब तक के हम आपका आखिर वो भूख और जो बाकी है ये भी खा लो वो भी खा लो पर उसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन साथ ही ये भी समझते जाओ कि इसमें है सब प्रभु को अपने तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं जुबान की जाएंगे कि इसमें खाया तो थोड़ा सा संतोष नहीं के बजाय रजो होने हो जाए और चित्त जो चलाए ना बड़ी एहतियात क्यों कि खाने से खून बनता और खून से ही बनता तो ख्याल में तब्दीली आ जाए। फिर सोसाइटी बहुत जरूरी जहाँ और चीज करते हो वहाँ इसकी सोसाइटी अलग है उस सोसाइटी में वो करो जहाँ परमात्मा के नाम का जिक्र बेकार की सोसाइटियाँ क्यों कि अगर उनका आपसे प्रबल संस्कार है तो आपको दाद दे इसके लिए भी एक तरतीब है कि जब जब मौका मिले तब तब पश्चाताप करो कि हे प्रभु आज हम गलत जगह चले गए क्षमा करो और सोते वक्त हिसाब कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि हम गलत जगह चले गए हों और उसका हम संस्कार ले आए हों। जैसे शाम को सारे रोकड़ का मुनि हिसाब करता है क्या फलानी जगह जितना पैसा आया फलानी जगह जितना पैसा आया इनको खर्च किया ऐसे तुम भी देख लो कि हमने कहा गलत गए
कहीं हमारी मेजोरिटी की गलत बात करने तो नहीं गई, टाइम की जो वक्त था हमारा ज्यादा खतर गलत जगह तो नहीं चला गया। और फिर दो चार मिनट फिर प्रभु से प्रार्थना कर लिया, तो इसके नतीजे ये हुआ कि रात में जब सो गए तो सारा वक्त रात में सूर्य ही मिल गया, और आपको उतनी तपस्या नहीं करना पड़ेगी, वे तपस्या ही के काम होंगे। देखो सत्संग की वजह से तेरी रास्ता शायद वहां से बहुत, जो लोग महज इसको सेकेंडरी समझते हैं वो इसके माने इसकी अभी ट्रुथ को इसको प्राइमरी करो, दुनिया की सब चीजों को सेकेंडरी करो, तब तो काम ठीक है, वरना इसको सेकेंडरी कर दोगे और परमात्मा दुनिया की चीजों को प्राइमरी कर दोगे तो उन्हीं की चीजों को ले लो, फिर परमात्मा दबा रहे। और फिर ये कहोगे कि ना हमारी तबीयत नहीं लगती, ये नहीं होता है, बनाना अपने आप में नहीं करना, तुमने तो उसको होली सेकेंडरी बना रखा, तो इसके साथ तबीयत लगने करते हो, ये ऐसी बात है कि जो डेली लाइफ पर आपकी मदद करे। और फिर जितने सच्चाई करोगे उतने ही सच्चे बनोगे, लव इज गॉड ट्रुथ इज गॉड, दोनों चीजें जो है यही आप कि बिल्कुल सच्ची ट्रुथ और सच्चाई करो, जहां इसमें जरा भी लवनेश होगी समझ उतनी करोगे। और संतों ने अपनी लाइफ में बड़ी एग्जाम्पल से बड़ी एग्जाम्पल। और फिर एक और चीज से बचना, देखो शराबी के पास जाओगे तो तीन चार दिन के बाद जरूर ये हो गया कि भाई जरा हम भी तो पीके देने कैसे आए, ज्वारी के पास उसके वजह तो उसने अपना एक सर्किल बना रखा, और जहां उस सर्किल में घुसे और वो असफल आए तो वो अपना सर्किल बना, तो तुम्हारे पास जो आए वो परिवार के हिसाब का देखते जा, तो अगर तुम्हारा सर्किल स्ट्रांग है तो उसका सर्किल दब जाए, और अगर तुम्हारा कमजोर है तो उसका भावी हो जाए, हर शख्स अपना सर्किल बना लेता है। वो भूषण जी थे ना, उनका ये था कि कुछ जगह तक कोई वहां माया नहीं, तो जो भी जाता जिस वक्त गर्ण गए हैं तो जैसे ही घुसे वहां माया सब खत्म, तो उनका सर्किल बड़ा स्ट्रांग, और ऐसे ही आप अपना सर्किल बना, इतना स्ट्रांग सही जितने वो तो बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन सर्किल आप भी बना सकते हैं, तो जैसे ही घुसे, और देखो एक चीज और जैसे ही आदमी घुसता है पूरा नक्शा उसका सामने रहता है, उसी को रीड कर लो और उसी को मुताबिक चलो, और फिर तालीम का भी सिलसिला उसी के हिसाब से शुरू करो, कि अगर कर्मकांडी है तो सिवाय कर्मकांड के तुम कुछ भी बताओगे सुनेंगे, ऐसे ही भक्त है तो सिवाय भक्ति के बाद तो कुछ नहीं सुनो, और तीसरा है ज्ञानी है तो वो तो उसका मूड ही डिफरेंट है, तो तीनों को अलग अलग चीज कर्मकांडी है उसे खुद कर्मकांड बता दो, और साथ ही साथ उससे ये भी कह दो अब तुम क्या करो, तो प्रेम का झटका उसके हृदय में देते जाओ, जब देखो कि इसका कमजोर पहलू पड़ा तो झटका का मार दिया ताकि प्रेम एक्साइट हो जाए, थोड़े दिनों के बाद वो इतना मानूस हो जाएगा कि सिवाय तुम्हारे और किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्यों कि तुमने उसे अपने प्रेम से अट्रैक्ट करा, और क्या सच्चा प्रेम, जिस तरह सच्चा व्यवहार करोगे सच्ची गवर्नमेंट देगी, सच्चाई में लास्टिंग का है, सच्चाई लास्ट कर झूठ थोड़े दिनों के बाद खत्म हो, तो जितना भी है फुल ट्रुथ और फिर सच्चा प्रेम, यानी उसमें कोई लगे बनावट न, और प्रेम में क्या अपने को ऊपर से संतावन लय कर लिया, सबसे झटका दिया, पांच सात दिन के बाद भूल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी हो सके बिल्कुल सच्चाई कर देगा, तुम अपने को और एक भी बात परमार्थ की नहीं करना चाहते तो सिवाय इसके खाली नाम लिखा लिया और कुछ नहीं। तुम्हारे व्यवहार में और दुनियादार के व्यवहार में जरा फर्क होने और जब तक ये चीज नहीं होगी तो एक वक्त आएगा कि झूठ खुल निकलेगा और लोग भाग निकलेगा। किसी वक्त में दूसरों को गलत समझते थे वो तुम्हारे इतने कायल हो जाएंगे कि जिसकी हर। और ये क्या हो, देखो दुनिया में डिप्लोमेसी चल सकती है और बातें भी चल सकती है, लेकिन परमात्मा जितने साथ होके जाओगे उतने ही जल्दी अच्छे से वहां कुछ नहीं सिवाय सच्चाई।